ओम शांति। भारत के इतिहास में 16वीं शताब्दी चैतन्य महाप्रभु कभी हुए थे, जिन्होंने भक्ति की लहर फैलाई थी सारे भारत में, मीरा से लेकर तो भारत के महाराष्ट्र और दक्षिण के सारे भक्त का जो निर्माण हुआ, जन्म लिया, वो एक लहर फैलाने वाले महान भक्त चैतन्य महाप्रभु, उनके एक शिष्य थे सनातन गोस्वामी, और उस सनातन गोस्वामी के पुत्र थे वीरभद्र, जो कि बहुत बड़े योगी थे और जिनके लगभग 1200 शिष्य थे। वो सारे 1200 शिष्य ब्रह्मचारी थे, उनको नेड़ा कहा जाता था, अर्थात जिनके बाल मुंडवा दिए गए हैं, ऐसे वो पक्के बाल ब्रह्मचारी थे 1200। परंतु उस वीरभद्र को ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि वो 1200 के 1200 इतने पावरफुल थे, इतने शक्तिशाली हो गए थे कि जो वो कहते थे सत्य हो जाता था। यदि उनके विरुद्ध कोई कुछ कह दे तो उस व्यक्ति का अहित हो जाता था। उनकी अध्यात्म की शक्ति इतनी बढ़ रही थी और वो एकदम चिंतित हो जाता है, ईर्ष्या होती है कि ये मेरे से आगे जा रहे हैं। तो बहुत सोच विचार करके वो एक निष्कर्ष पे पहुंचता है, 1200 नहीं 1300 थे वैसे तो, 1300। और वो उन सभी शिष्यों को कहता है कल सुबह स्नान करके सब मेरे पास आ जाना। उसमें से 100 शिष्य जो होते हैं उनको थोड़ा संशय होता है और वो भाग जाते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि हम यदि गए और गुरु ने कुछ कहा तो वो करना पड़ेगा। इसलिए 1300 में से 100 भाग जाते हैं, 1200 बचते हैं। वो 1200 गुरु के पास आते हैं और गुरु उनसे कहता है कि मेरा ये आदेश है, निर्देश है, दूसरी 1200 नेड़िया अर्थात सन्यासिनी शिष्याएं, वो उन शिष्यों से कहता है कि तुम एक एक को इस एक एक से शादी करनी है, और वो उन 1200 शिष्यों की शादी करा देता है। 100 जो होते हैं वो भाग जाते हैं, उनको थोड़ा डर लगता है, उनको थोड़ा सा भय हो जाता है कि गुरु कुछ ऐसा कहने वाला है शायद, तो हम नहीं चाहते कि हम अवज्ञा करें, इसके लिए पहले ही भाग जाते हैं। और वो जो 1200 होते हैं और जिनकी शादी हो जाती है, धीरे 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 उनकी वो जो शक्ति थी, उनका वो जो सामर्थ्य था, उनका वो जो ओज और तेज था, वो नष्ट हो जाता है। एक गुरु ही अपने शिष्यों के पतन का कारण बनता है, ईर्ष्यावश। और सीखने की बात है, कहां वो मुक्त जीवन, कहां वो फ्री लाइफ, और कहां वो फंस जाते हैं। तो ये सत्य कहानी है जो इतिहास में हुई 1200 नेड़ास एंड 1200 नेड़ीस, इस रूप में इसका वर्णन आता है। जो आत्मा मुक्त थी और जो आत्मा स्वतंत्र थी और जो आत्मा ब्रह्मचर्य में स्थित थी, कैसे वो गिर गई और कैसे उसका पतन हो गया। तो कुमार जीवन अर्थात स्वतंत्र जीवन, कुमार जीवन अर्थात जिस जीवन में कोई बंधन नहीं, कुमार जीवन अर्थात जिस जीवन में किसी पर भी अवलंबन नहीं, स्वतंत्र जो है, एब्सोल्युटली फ्री लाइफ। क्योंकि यदि किसी से आसक्ति, किसी से मोह, किसी से लागत, किसी से लगाव, किसी से झुकाव, किसी से अटैचमेंट, किसी से फैमिलियरिटी, किसी से इंटीमेसी, किसी से रिलेशनशिप डीप, किसी से टुगेदरनेस की फीलिंग, अर्थात बाप से जुदा हो जाना, और जिस जीवन में जितनी अधिक प्योरिटी, वो जीवन उतना अधिक शक्तिशाली होगा। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है संगम युगी समुद्र के लुटेरे। संगम युगी नाव है, और ये जो नाव है बड़ी नाजुक है, भगवान इसका खेवैया है, परंतु सी पायरेट्स वो लुटेरे भी बहुत है, जो आते हैं और इस जहाज पर जो खजाना है उसे लूट कर, चुरा कर, डाका डाल कर ले जाते हैं। बाइबल में वर्णन है गलीली झील, 12 लोग एक नाव पर सवार होकर जा रहे हैं, और जैसे ही वो जा रहे होते अचानक से तूफान आ जाता है, इतना भयंकर तूफान, बिजलियां कड़कती है, बादल गरजते हैं, आंधी, और समुद्र का पानी नाव में आने लगता है, नाव हिलने डुलने लगती है, 4, 12 के 12 वो लोग घबरा जाते हैं, और देखते हैं एक उनका गुरु, उनका मालिक, उनका मास्टर सोया पड़ा है। वो उसको उठाते हैं, उठो, हमारी रक्षा करो, ओ लॉर्ड सेव अस, और वो उठता है, और ईसा मसीह आकाश की तरफ हाथ करके कहता है, पीस बी स्टिल, शांत, शांत और शांत, और वो तूफान शांत हो जाता है। और फिर वो जीसस अपने शिष्यों से कहता है, 12 शिष्यों से, क्या तुम्हें इतना भी विश्वास नहीं कि जिस नाव में मैं बैठा हूं क्या वो कभी डूबेगी? ओ ई ऑफ लिटिल फेथ, हे कम ईमान वालों, क्या ये भी पता नहीं कि तुम्हारी नाव में कौन बैठा है? क्या तुम्हें यह भी नहीं पता तुम्हारे साथ कौन है? यदि तुम्हें पता होता तो ये डर क्यों, ये भय क्यों, क्यों घबरा रहे हो? ऐसा वर्णन है संगम युग की। ये नाव, ये जहाज, ये शिप, ये नैया, ये नौका, ये बेड़ी कौन चला रहा है? हमारा बोटमैन कौन है? इस जगत का जो केवट है वो कौन है? स्वयं भगवान हमारा केवैया बना है। तो हमें क्या डर, परंतु फिर भी सावधान, अलर्ट, होशियार। अभी अभी मुरली चली शांतिवन में, 17 तारीख को 3 महावाक्य बाबा ने उच्चारण किए थे, सावधान, अलर्ट, होशियार। समान में स्थित रहो, समय के महत्व को जानो, समय के महत्व को कम न करना, समान से नीचे न उतरना, ये 2 मुख्य शिक्षाएं थी उसमें। सभी ने मुरली सुनिए। 16 नवंबर 2006 की शायद मुरली थी। तो जिस नाव में हम बैठे हैं, जीवन की ये नाव, इसका खिवैया स्वयं भगवान है। परंतु सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि शत्रु बहुत शक्तिशाली, और इस जीवन में, कुमार जीवन में, वैसे तो ढेर सारे शत्रु है, पर एक शत्रु सबसे अधिक शक्तिशाली है। कौन सा? काम। क्यों? क्रोध शक्तिशाली इतना क्यों नहीं है? लोभ इतना शक्तिशाली क्यों नहीं है? अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, क्या कारण है? क्या कारण है कि भगवान कहता है मैं केवल इसी एक विकार से मुक्ति के लिए आया हूं, पतित को पावन बनाने के लिए आया, मेरा और कोई धंधा नहीं, मुझे और कुछ करना नहीं है, क्रोधी को अक्रोधी बनाने में नहीं आया। पतित क्रोधी को नहीं कहा जाता है, पतित लोभी को नहीं कहा जाता है, पतित अहंकारी को नहीं कहा जाता है, काला मुंह क्रोधी के लिए नहीं प्रयोग किया जाता है, पांचवी मंजिल से गिरना क्रोधी के लिए नहीं कहा गया है, चकना चूर हो जाना ये लोभी के लिए नहीं कहा गया है। भगवान पतित पावन है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, इसमें एक ही सीमा रेखा है, इधर प्यूरिटी है इधर प्यूरिटी नहीं है, इधर निर्विकार काम रहित है इधर काम है, दो सृष्टियों में एक ही अंतर है, एक निर्विकारी सृष्टि एक विकारी सृष्टि। लुटेरे तो बहुत है परंतु मुख्य जो है वो इस काम है, क्योंकि इस यज्ञ में जितने झगड़े हुए इसी के कारण हुए, इस यज्ञ में आज तक जितनी बाधाएं आई इसी के कारण हुई। ब्रह्मा बाप को कितने लोगों ने जाकर कहा कि ये ब्रह्मचर्य को हटा दो फिर आपकी संस्था में बहुत लोग आ जाएंगे, अभी कितना विरोध है, अभी लोग क्या क्या छापते हैं न्यूज़पेपर में आपके विरुद्ध में, इस एक हटा दो पूरी भीड़ लग जाएगी। बाबा ने क्या कहा था, क्या उत्तर था बाबा का, क्या चाहिए बाबा को, शेर शेरनी चाहिए जो धाड़ लगा है, भेड़ बकरियां नहीं चाहिए यहां पर, और धाड़ वही लगा सकते हैं जिनमें प्यूरिटी का बल है, प्यूरिटी की ऊर्जा है। स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा था व्हाट इट वाज दैट यू स्पोक एंड एवरीबॉडी सो इंप्रेस्ड, ऐसा क्या था कि उस सभा में इतने बड़े बड़े विद्वान लोग थे, ऐसा क्या था कि उस सभा में इतने प्रकांड पंडित विराजमान थे बैठे थे, देश विश्व भर से आए हुए, और आप तो कितने युवा थे 28 साल की उम्र, ऐसी क्या बात थी आप में कि इतने क्यों प्रभावित हो गए। उन्होंने एक ही बात कही थी, दिस इज ऑल ड्यू टू द पावर ऑफ ब्रह्मचर्य, आई हैव नॉट अलाउड माय माइंड टू हैव अ सिंगल सेक्सुअल थॉट इन माय लाइफ। I owe everything to this power of celibacy. ऐसी वो ऊर्जा है, ऐसी वो शक्ति है जो यदि नीचे बहे तो शरीर शरीरों को जन्म देगा, और वही ऊर्जा जब ऊपर बहेगी ओजस बन जाएगी, पावर बन जाएगी, और संसार इसी शक्ति का दुरुपयोग कर रही है, नीचे बहा रही है, शरीर जन्म ले रहे हैं, और उससे भी बड़ा एक विकार जो शरीरों को जन्म तो नहीं दे रहा है परंतु स्वस्व की ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं। जैसे कोई एक माली जिसके पास बहुत सुंदर बगीचा है, बहुत बड़ा बगीचा है, और जिसमें भांति भांति के फूल है, सुंदर सुंदर सुगंधित फूल है, एक मास के बाद सारे फूलों को एकत्र करता है, उनका रस बनाता है, और वो सारा रस एक नाली में जाके बहा देता है, क्या कहेंगे उसे, बुद्धिमान माली या मूर्ख। देह में भी ऊर्जा है और देह में भी रस निर्माण हो रहा है, और उसी रस को और उसी वाइटल फोर्स को और उसी शक्ति को यदि कोई संचय न करे और बहा दे तो वो वीर्यवान नहीं बन सकता, शक्तिशाली नहीं बन सकता। और इस विकार ने विश्व को जकड़ लिया है। उसमें किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं, उसमें ट्रिगर्स है। क्या देखा, क्या सुना, क्या स्पर्श किया, क्या सोचा, कौन सी स्मृतियां आई, अननेसेसरी सर्फिंग, अननेसेसरी स्ट्रीमिंग, वन क्लिक ब्रह्मा कुमार से शूद्र कुमार। इसलिए कुमारों से मुलाकात अव्यक्तवाणी 1972। शरीर सांप है, सांप में विष होता है। सभी कुमारों से बाप दादा कह रहे हैं, आज के बाद इस सांप को देखना ही नहीं, केवल मस्तक मणि को देखो। अभी साकार मुरली चली थी शायद, 21 तारीख की, प्रश्न उत्तर लास्ट लाइन, उत्तर की लास्ट लाइन, शरीर को देखने से क्या होगा, विकारी ख्यालात चलेंगे। कौन सा अभ्यास अशरीरी बनने में बहुत मदद करता है? शरीर को देखने से विकारी ख्यालात चलते हैं, इसलिए अशरीरी भव। इसलिए अपने आप को चेक करना है। जितनी आत्माएं आज तक इस यज्ञ से बाहर गई है, 10 साल रहकर, 20 साल रहकर, 40 साल रहकर, मधुबन में रहकर, सेवा केंद्र पर रहकर, घर गृहस्थी में रहते हुए, एक ही कारण से गई है, एक ही विकार। ऊपर से बहुत सारे अलग अलग रूप थे, ऊपर से दिखाई दे रहा है झगड़ा हो गया, ठीक नहीं लगा, ईर्ष्या हो गई, पर ये बहुत छोटे कारण है, इससे कभी कोई नहीं गया। जो गया है इसी विकार ने खींचा, आकर्षित किया। और जब तक इसे समझाना जाए, जब तक इस पर चर्चा ना हो, केवल इतना कहने से कुछ नहीं होगा, काम महाशत्रु है, आदि मध्यंत दुख देता है, काम सबसे बड़ा काटा है, काम सबसे बड़ी हिंसा है, काम सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, इतना कहने से कुछ नहीं होगा। जब तक इसे समझा न जाए, आज तक इतिहास में जिन्होंने भी ब्रह्मचर्य का पालन किया है, उसमें अधिकतर वो दमन था, सप्रेशन, सप्रेशन ऑफ सेक्सुअल डिजायर्स, उदात्तीकरण नहीं था, सब्लिमेशन नहीं था, भाग गए, वनों में चले गए, तपस्या करने लग गए, द्वारम किमेकम नरकस्य नारी, नारी से दूर चले जाओ। परंतु तपस्या करते हुए शास्त्रों में वर्णन है, अप्सराएं आ जाती थी। कहां से आती थी अप्सरा? अप्सराओं को क्या पड़ी हुई है, बेचारे पतले दुबले, बेचारे बूढ़े पाड़े ऋषि साधु, वो कोई अप्सरा कहीं से नहीं आती थी, वो मन का प्रोजेक्शन था। ऐसी कोई अप्सरा किसी को क्या पड़ी है आने की, ना ऐसा कोई स्वर्ग जहां से आती थी। देवर मेंटल प्रोजेक्शंस ऑफ द सप्रेस्ड डिजायर्स, दमन जहां हुआ है उसी का वो प्रक्षेपण था। बीच में स्त्री है, एक भोग में डूबा हुआ है और दूसरों ने उसका त्याग कर दिया है, पर त्याग करने के बाद उधर बैठ के भी इसी का चिंतन चालू है, स्थिति दोनों की सेम है। ये सीधा खड़ा है, यह शीर्षासन कर रहा है सन्यासी, ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि समझा नहीं है। संसार में पवित्र आत्माएं अगर गिनी जाए तो गिनी चुनी है केवल द्वापर से अब तक, बाकी सभी डूबे उसमें, शूरवीर, कितने युद्ध हुए, क्यों हुए, यही कारण। जमीन और स्त्री दो ही कारणों से युद्ध है, और एक नहीं असंख्य लाखों लोग मर गए सेना के, सम्राटों की वासना पूर्ति के लिए। भगवान अब आया है और उसने ऐसी परिभाषा दी है पवित्रता की जो आज तक किसी ने नहीं दी। तो सबसे बड़ा लुटेरा कहे या लुटेरे कहे वो काम और उसके सारे वंशज, क्योंकि काम केवल एक नहीं है, सूक्ष्म उसके इतने सारे रूप है, इतने सारे रूप है। इन सभी को समझना और उनसे परे निकल जाना, यही सबसे बड़ी साधना है। बाकी सेवाएं तो बहुत है और सब बहुत सेवाएं कर रहे हैं, परंतु सेवाएं करते हुए भी कई लोग जो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसका भी सूक्ष्म कारण यही है। तो आज की क्लास में हम ऐसी कुछ 16 बातें देखेंगे जो कि हर एक को करनी है, और एक दिन नहीं, हर दिन। और केवल करनी नहीं, उसे याद भी रखना है और दूसरों को सिखाना भी है, उसका स्वरूप बन जाना है। क्योंकि कहा कि देह में जो शक्ति है वो ऊर्ध्वरेता बन जाए, ऊर्ध्वरेता, अधोगामी ना बने, उधोगामी नहीं, ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वगामी अर्थात यहां द सेम पावर टर्न्स इनटू ओजस, ओजस शक्ति है। और ऐसे व्यक्ति की स्मरण शक्ति बहुत पावरफुल होती है, ऐसे व्यक्ति की वाणी में कोई एक अद्भुत प्रभाव होता है जो आत्मा रोक नहीं पाएगी, तीर की तरह हृदय पर आक्रमण करेंगे ऐसे शब्द। वो पावर जो है शब्दों की, बोल की, प्योरिटी की पावर है। तो ऐसी ऊर्जा अपने अंदर हमें सबको भरनी है। तो ऐसी 16 बातें हम देखेंगे। ले सकते हैं, इस देह में ब्रेन, ये स्पाइनल कॉर्ड, विजुअल ट्रिगर अर्थात आंखों से क्या देखा जाएगा, ऑडिटरी कानों से क्या सुना जाएगा, टच टैक्टाइल हाथ किसे स्पर्श कर रहे हैं, और चौथा साइकोलॉजिकल, और पांचवा मेमोरीज। ये पांचों ट्रिगर उत्तेजक जब यहां टच करते हैं तो इस स्पाइनल कॉर्ड में उत्तेजना उत्पन्न होती है, और वही इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं, और वही उत्तेजना वुड एक्साइट द सेंसुअल ऑर्गन्स। और जब ऐसी उत्तेजना होगी, जब वासना इधर भरेगी तो खून इधर भरेगा, और डिसिपेशन ऑफ एनर्जी होगा, शरीर की ऊर्जा, शरीर की शक्ति बाहर चली जाएगी। यदि इनमें से कोई भी ट्रिगर ना आए तो कुछ नहीं होगा। जो हो रहा है इधर से हो रहा है, क्या व्यक्ति देख रहा है, क्या व्यक्ति सुन रहा है, किसे व्यक्ति स्पर्श कर रहा है, साइकोलॉजिकल में बहुत सारे है। हॉल्ट कहते हैं इसे, हॉल्ट अर्थात हंगर, एपिटाइट, लोनलीनेस, टायर्डनेस, ये चीजें आ गई तो भी उत्तेजना होगी। जब व्यक्ति बीमारी से, काम विकार का कोई संबंध नहीं है, पर बीमार जब होता है तो काम और बढ़ जाता है। अकेलापन जब आता है तो खालीपन काम की तरफ खींचता है, थक जाता है तो काम की तरफ खींचता है, क्योंकि काम रिलीज फिनोमिनन भी है, रिलीफ मिलता है, क्षणिक सुख फॉलोड बाय फ्रस्ट्रेशन। कौन सी चीजें अंदर जा रही है? पुरानी यादें, पुराने भोग की स्मृति, साइकोलॉजिकल, उदासी सी है, काम खींचेगा, थकान है, काम खींचेगा, असफलता प्राप्त हुई, काम की तरफ खींच होगी। देखा जाए तो इनका क्या संबंध काम से, परंतु स्टडीज जो भी हुई है उन सब ने यह दिखाया है, अद्भुत है। व्यक्ति ने ना कोई वीडियो देखा, ना कोई चित्र देखा, ना कोई पोस्टर देखा, पर उदास हो गया है। उदासी ही उसे काम की तरफ खींच रही है, खालीपन आ गया अचानक, क्या करूं और क्या नहीं, इसको समझ लेना है। तो हमने कहा ऐसे कुछ तो ऐसी 16 बातें देखेंगे जो हर एक को करनी है, और वो अगर हम करें तो कभी भी किसी भी विकार का आक्रमण ना होगा, क्योंकि एक बार ये जो काम है इसकी कुछ खूबियां है। दिस इज एडिक्टिव, एडिक्शन है इसमें। विचार में भी एडिक्शन है, कल्पना में भी एडिक्शन है, कंपल्शन है इसमें, फोर्स है इसमें, विड्रॉल सिम्टम्स है। द फॉल ऑफ द टेस्ट ऑफ सेक्स इज फॉल ऑफ मैन, अंग्रेजी में कहावत है, द टेस्ट ऑफ सेक्स इज फॉल ऑफ मैन। एडिक्शन है, कंपल्शन है, एक्साइटमेंट है, एंग्जाइटी है, बेचैनी है, एक अस्थिरता है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन यहां नष्ट हो जाता है। और लोगों ने कई प्रयत्न किए इसे इसको जीतने के लिए। इन अमेरिका देयर वाज अ ग्रुप ऑफ सन्यासिन्स एंड दे वर कॉल्ड फ्लैगिस्ट। वो लोग चाबुक रखते थे, यदि विकार का संकल्प आया तो अपने आप को मारते थे चाबुक से, तब तक जब तक खून ना आ जाए। पर उसका भी धीरे धीरे कुछ उलट परिणाम होने लगा। जितना ज्यादा मारते थे और जितना ज्यादा खून आता था उतनी ही वासना और भड़कती थी, फिर उल्टा होने लगा बाद में। चालू कहां से किया था और होने क्या लगा? तो ये कोई मार्ग ही नहीं है, उसको दबाना, दबाओ तो सुनामी की तरह आ जाता है, और जब तक इसको नहीं समझो तब तक वो समाप्त भी नहीं हो जाता है। इस सृष्टि में सबसे ज्यादा काम यदि किसी ने किया है इस पर, सिगमंड फ्राइड है, द फादर ऑफ साइकोएनालिसिस। उसी ने सबसे पहले कहा, नहीं तो भाव भाव कहते हैं सबसे ज्यादा पावन भारत था, सबसे ज्यादा पतित भी भारत ही बना, काम शास्त्र भी भारत में ही लिखा गया, सब कुछ भारत में हुआ, फिर ये विदेश इतना आगे कैसे चला गया विकारों में? ये इसकी देन है सिगमंड फ्राइड की, क्योंकि उसने जो सिद्धांत रखे, उसने कहा कि सब मनुष्य जो भी विक्षिप्त हुए हैं, पागल हुए हैं, वो एक ही कारण से हुए हैं, इस काम विकार के दमन से। इसके लिए दमन न किया जाए, इसे खुली छूट दी जाए। पर इस व्यक्ति ने शायद भारत के प्राचीन ग्रंथ नहीं पढ़े थे, और ना ही उसे अध्यात्म का कोई ज्ञान था। उसने सबकॉन्शियस माइंड को सबसे ज्यादा समझने की कोशिश की, इस काम को सबसे ज्यादा समझने की कोशिश की, परंतु सबकॉन्शियस माइंड को जानते हुए भी, काम को समझते हुए भी, वो खुद भी उसके अधीन था। उसने खुद अपने एक खत में लिखा है कि आई वॉज गोइंग वन डे एंड आई सॉ वन लेडी एंड आई फेल्ट सडनली आई शुड टच हर एंड देन आई टोल्ड माई ओन माइंड व्हाट आर यू डूइंग, what are you thinking, and I don't know what happened, and she pulled me like anything, और मैं भीड़ में गया और उसको जाके हाथ लगा दिया, और फिर आ गया, और फिर अब सोच रहा हूं ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, I have not understood myself how this has happened। वो जो जिसने इसे समझने की कोशिश की वो भी इसके अधीन था। तो केवल समझ भी काफी नहीं है, कुछ तो और चाहिए। तो ऐसी हम कुछ बातें देखेंगे। शब्द है बी आर ए एच एम ए, ब्रह्मचर्य, सी एच ए आर वाई ए, व्रत। 16 शब्द है, एक एक शब्द में एक एक राज है। सबसे पहला है बिजी। क्या होना है? कुमार जीवन अर्थात बिजी हो जाना। जब जब मन खाली होगा वो कहीं ना कहीं जाएगा, जब जब मन खाली होगा वो इंटरनेट की तरफ जाएगा, तो कहीं और सोशल मीडिया की तरफ जाएगा, तो कुछ चिंतन में जाएगा। कुमार जीवन में स्वयं की दिनचर्या इतनी व्यस्त कर दो कि जिसमें कोई भी विकार के लिए स्थान ही नहीं है। स्वामी दयानंद से किसी ने पूछा कि क्या आपको काम विकार नहीं सताता है, आप ब्रह्मचारी हो, अकेले रहते हो, अकेले कमरे में रहते हो। ही सेड यस, लस्ट कम्स एवरी टाइम्स एंड इट ट्रबल्स मी, बट आई टेल हिम That please don't come, I am busy right now. Come after some time. थोड़े देर के बाद आना, अभी मत आओ क्योंकि मैं अभी व्यस्त हूं, क्योंकि काम कितने करने हैं, बिजी रहना। मधुबन के एक भाई है, बड़े वरिष्ठ, वो बड़ी हंसी में कहते हैं, उनको कोई पूछता है कि आपने शादी क्यों नहीं की भाई साहब, तो कहते मेरे को टाइम ही नहीं मिला, बिजी इतना था सुबह से लेकर रात तक, अमृत वेला, सेवा, मुरली, टाइम ही नहीं मिला। तो बिजी हो जाना है, ऐसी दिनचर्या सेट करना है अमृत वेला जिसमें नियमित हो, ऐसी दिनचर्या सेट करना है मुरली और मुरली का चिंतन हो, जो कर्म योग का पीरियड है, जो ट्रैवलिंग का पीरियड है, जो ऑफिस का पीरियड है, उसमें भी कैसे योग युक्त हो जाए। एक भाई ने इतना अच्छा अनुभव सुनाया, कहता है मैं 4 घंटा ट्रैवलिंग करता हूं, और वो मेरा 4 घंटा ट्रैवलिंग की वजह से मैं इतना ज्ञानी बन गया हूं क्योंकि क्लास चालू कर देता हूं, और क्लास 2 घंटा सुबह सुनता हूं, 2 घंटा शाम को सुनता हूं, नहीं तो कौन बैठ के सुनेगा कोई क्लास। इससे बुद्धि के कपाट खुल गए। बिजी कर देना स्वयं को, शाम को बिजी कर देना, रात को सोने के पहले का समय है वो भी स्वयं को बिजी कर देना, क्योंकि सबसे ज्यादा माया वहीं पर आती है। ये काम करना है बिजी। उसके बाद है आर, रीडिंग, अध्ययन करते रहना है। यज्ञ की ढेर सारी किताबें हैं, सारी अव्यक्त वाणी है 69 से लेकर अब तक, क्या हमारी सब पढ़ के होगी? किस किस की होगी जरा हाथ खड़ा करना। 69 से लेकर अब तक की, और फिर परिस्थिति आएंगे तो हम कहेंगे बाबा ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस। बाबा कहेंगे आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, गो बैक, रेफर टू अव्यक्त मुरली नंबर, डेट डेट 1992 72, उसमें मैंने कहा था, मैं तो पहले ही बता दिया था ये होगा। अब ये मत कहना कि आपने बताया नहीं, सब बता चुके हैं। रीडिंग को बढ़ाना है अपने, रीड मुरली, साकार मुरली, अव्यक्त मुरली, मैगजीन्स, ब्रह्मा कुमारी लिटरेचर एंड नॉन ब्रह्मा कुमारी स्पिरिचुअल लिटरेचर, मॉरल लिटरेचर, जिसमें महान आत्माओं की जीवन कहानियां हैं, जो हमें ऊपर रखे थोड़ा संसार के चिंतन से, नहीं तो व्यर्थ की चीजें पढ़ने में लग जाते हैं, व्यर्थ के नॉवेल्स, व्यर्थ की मैगजीन्स। कुछ दिन पहले मुरली में था, कई कई बच्चे रात को सोते सोते नॉवेल पढ़ते पढ़ते सोएंगे तो क्या गति होगी, उससे अच्छा अपने मन को श्रेष्ठ लिटरेचर से भर दो। फिल द माइंड विथ प्योर लिटरेचर, फिल द माइंड विथ एलिवेटिंग लिटरेचर, महात्मा जीवन कहानियां पढ़ो लोगों के, जो महान आत्माएं हुई उनकी जीवन कहानियां, बहुत प्रेरणा मिलेगी। दशरथ मांझी के बारे में सुना है, 22 साल तक, फ्रॉम 1960 टू 1982 अकेला माउंटेन मैन, अकेला छन्नी और हथौड़ा लेकर खोदते रहा खोदते रहा खोदते रहा। उसकी पत्नी ने शरीर छोड़ दिया क्योंकि हॉस्पिटल दूर था, बीच में पर्वत था। उसने सोचा इस पर्वत को लोगों ने बहुत हंसी उड़ाई, तुम अकेले क्या कर पाओगे। 22 साल तक अकेला करता रहा, छन्नी और हथौड़े से पर्वत, 110 माइल का वो उसको उसने रास्ता बनाया, जो 55 किलोमीटर की दूरी थी वो 15 किलोमीटर कर दी। कैसा दृढ़ संकल्प है, किसमें वो बिजी रहा। और ऐसा नहीं कि वो खाली यही काम करता था, वो खुद कमाता भी था अपना जो भी उसका काम था, और ये भी साथ साथ करता था। प्रेरणादायी चरित्र है ऐसे संसार में बहुत सारे, ये तो एक कहा, ऐसे कितने हैं कि जिनके पास कुछ भी नहीं था फिर भी सब कुछ क्रिएट कर दिया। ऐसे चरित्र पढ़ेंगे तो मन में शक्ति भरेगी। जो उदासी आ गई है, एकदम नीचे चले गए, पुरुषार्थ ठप हो गया है, ना तो जिसमें अमृत वेला है, ना तो मुरली जा रहे हैं बैठे है, परंतु मन भटक रहा है, चिंतन कुछ नहीं है, ऐसी स्थिति से बाहर निकलने के लिए रीडिंग इज द बेस्ट मेथड। और सारी किताबें ऑनलाइन अवेलेबल है, पीडीएफ अवेलेबल है, अगर कोई इसी से पढ़ना चाहता है। लाइब्रेरी में जाओ, एक्सप्लोर द वर्ल्ड लिटरेचर स्वयं को बिजी रखने के लिए। तीसरा है अमृत वेला। ब्रह्मचर्य की साधना बिना अमृत वेला नहीं हो सकती, क्योंकि अमृत वेला ही शरीर से डिटैचमेंट का अनुभव होगा, पूर्ण शरीर से अलग हो जाना तो ही पावर भरेगी, नहीं तो जो कुछ हम करेंगे वो केवल दमन होगा। केवल ये एक्सप्लेनेशन ही उससे मुक्ति का मार्ग नहीं है, अशरीरीपन का अनुभव चाहिए कि मैं देह हूं ही नहीं, और लंबा और गहरा अनुभव चाहिए और शक्तिशाली अनुभव चाहिए। और जिनको दोपहर में रेस्ट के लिए टाइम है वो तो जितना जल्दी हो सके उठे, और जिनको नहीं भी है वो दिनचर्या ऐसी सेट करे कि जिसमें अमृत वेला शक्तिशाली हो जाए। कितने बजे चालू होता है अमृत वेला? और हम कितने बजे करते हैं? अब अपने आप को देखो, 3:30-4 बजे उठ के कब अशरीरपन होगा? आत्मिक स्वरूप में स्थित होने के लिए कितना टाइम लग जाता है, और तब तक तो 4:45 का गीत बज जाता है, और तब तक वापस जाकर सोने की तैयारी चालू हो जाती है। शक्तिशाली अनुभव के लिए शक्तिशाली अनुभव अमृत वेला चाहिए। हम लोगों का लक्ष्य होता है मधुबन में 2:15 तक मधुबन पहुंचना है, स्नान वगैरह सब कुछ करके। मॉर्निंग। और ऐसा नहीं कि आराम से जल्दी सो रहे, वो साधना है, हर एक को करनी पड़ेगी। कम से कम 4 घंटा 24 घंटे में बैठ के योग चाहिए, नीचे बैठकर 4 आवर्स। सुबह 1 घंटा करना है तो दोपहर को 1 घंटा, फिर रात को 2 घंटा, और सुबह 2-4 घंटा कर दो, क्योंकि जिनकी दिनचर्या बहुत व्यस्त है जैसे हम खुद, ऐसा नहीं है कि रात भर पेशेंट्स के कॉल चालू रहते हैं, रात भर आईसीयू का इमरजेंसी चालू रहता है। एक पेशेंट आया 10 बजे, उसका 11 बजे रिपोर्ट आते हैं, 12 बजे देखने जाओ, वो सब एक तरफ वो चालू रहेगा, पर तपस्या अपने आप में चालू रहे इसके लिए कोई बहाना नहीं दे सकता। अमृत वेला के लिए इसके लिए कहा अमृत वेले, जल्दी उठने का लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है जल्दी सोने का। और कईयों की सेवाएं 11 बजे तक चलती है, माना एडजस्ट करना पड़ेगा फिर उस तरह से दिनचर्या को। जॉब ही ऐसे ले रखे हैं कि जिसमें कुछ है ही नहीं, वो शायद जॉब भी बदलने पड़ेंगे, क्योंकि तपस्या इस संसार के किसी भी जॉब से बड़ी है। और ये समय फिर नहीं आएगा, और जो अमृत वेले का समय वो भी फिर नहीं आएगा, वो 3:30 बजे के बाद जो योग चालू होता है, जहां सारे ब्राह्मण आत्माएं उड़ गए। पर जो भी करना है बहुत स्लोली करना, धीरे धीरे करना, एकदम से नहीं करना। नहीं तो इसके लिए एक काम और दे रहे हैं आपको, अमृत वेला की किताब है एक, ठीक है, उसको फिर से खरीदो। अगर नहीं है, है तो फिर से लो, हार्ड कॉपी चाहिए, सॉफ्ट कॉपी नहीं, हार्ड कॉपी लेकर उसको पढ़ते रहना, कई बार 1 महीना उस किताब को ही पढ़ते रहना, तब तक जब तक कि वाक्य वाक्य याद ना हो जाए, क्योंकि वो बाबा के कहे हुए महावाक्य है। तो तीसरी जो चीज है इस काम को जीतने के लिए, वो है अमृत वेला। ऐसी उस आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाए, न चभाति भूत संगम, ये शरीर ये संग मैं नहीं हूं, तद ब्रह्म निष्कलमहम, मैं वो निष्कलंक आत्मा हूं, उस आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाए। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्म तत्वम, उस आत्म तत्व में स्थित हो जाना, प्रातस्मरामी। तीसरा, चौथा है होली कंपनी एच, ऐसी आत्माओं के संग जाना कि जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी है, ऐसों के संग नहीं रहना कि जिनको पुरुषार्थ से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी आत्माओं के संग रहना जिनका इंटरेस्ट सिनेमा में है, विकारों में है, फिल्मों में है। ऐसी यदि इंटरेस्ट वाली आत्मा है और हाँ वह उनको हमने अपने दोस्त बना के रखे हैं, तो उनके साथ हम भी गिरेंगे। ऐसे कितने ही कुमार कुमारी है, क्यों गिर गए? अभी अभी हमको एक कुमार का मैसेज आया, ईमेल, उसने लिखा कि हम लोग ज्ञान में चलने वाले 10-12 कुमार थे, फिर हम सब लोग साथ में शादी कर ली, और अभी हम सब अपनी युगल जो है उसको ज्ञान में लाना चाहते, कृपया मार्गदर्शन करें। अब क्या मार्गदर्शन करें, अकेले थे तब नहीं चल पा रहे थे, अब साथ में तो कहां से चल पाएंगे। मैं चाहता हूं कि वो भी, मेरी युगल भी बाबा की बच्ची बन जाए। अब क्या बाबा की बच्ची और कहां क्या, अब 1 से 2 और 2 से 4 हो जाओ, फिर परिवार ही साथ में चलना। हमारे यहाँ एक कुमार है, पहले कुमार थे अभी युगल है, कुमार भी बड़े पक्के थे, अभी युगल है तो अपनी बीवी और बच्चे वो सब है, वो कहते ये बच्चे भी शिव बाबा के ही है, खुद को छल रहे हैं, ना तो ज्ञान, ना तो योग, ना तो मुरली, पर कहते क्या है, ये बच्चे भी शिव बाबा के ही है। और आजकल तो एक नई माया है, ये जो बच्चा है ना, ये एडवांस पार्टी की आत्मा है, हमारे पास जो आई है ना घर में, ये कोई दादी विधि है जो आई है, इसके आने के लिए तो हमको ये करना पड़ा। किस संग में रहते हैं? होली कंपनी चाहिए, पवित्र संग चाहिए, पवित्र आत्माओं का संग। अगर कोई भी ऐसा दोस्त नहीं है तो किताबों से अच्छा और कोई संग नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है, क्लासेस डेली कम से कम एक क्लास सुननी है पुरुषार्थ की, सुबह सुननी है, शाम को रिवाइज करना है। और केवल सुनना अर्थात कनरस नहीं, पॉइंट्स निकालनी है उसकी, और जो पॉइंट्स निकाले अब क्लास को बाजू छोड़ दो, उसको रिवाइज करना है। फिर ये बात थी, ये नई बात थी जो मुझे पता नहीं थी, इसमें लग जाना। नहीं तो ये अगर नहीं रहा तो आत्मा नीचे नीचे नीचे। हमको याद है एक डॉक्टर हमारे पास थे MBBS, और यहां से गए और जाते समय PG के लिए गए। हमको याद है वो दिन, बाबा आ रहे थे, 18 जनवरी का दिन था, हमारा संगठन है एक छोटा, उसमें प्रतिज्ञा करके गए थे, बस अभी जाऊंगा PG करूंगा और आके बस सरेंडर, बस फाइनल। गए PG किया, फिर बाद में आना कम हो गया, फिर फेसबुक पर किसी बहन से दोस्ती हो गई, BK बहन, और फिर धीरे धीरे दोस्ती बढ़ गई। अभी आए थे तो उसको साथ में लेकर आए, और बाद में आना भी बंद हो गया। कितने सालों से तो आए नहीं, एक ही बार आए थे। कहां से कहां पहुंच गए, क्या उमंग था, ये करूंगा वो करूंगा ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, कुछ नहीं रहा, सब खत्म। संग कैसे मिल गया है? तो BRA मुरली चिंतन, लक्ष्य रखना है। जो रोज मुरली सुनते हैं वो केवल ऐसे नहीं छोड़ देना है, इसमें से टॉपिक्स निकालने हैं, उनका सारे दिन भर चिंतन करना है, मनन करना है। ऐसा भोजन नहीं लेना है जो उत्तेजना क्रिएट करे।